नमस्कार भारत, तारीख 10 जुलाई दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। साल भर बाद आज रूस के उफा में मिलेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से।
पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों और इनके दरमियान, यानी कि हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डिस्प्यूट्स और मसाइल हैं वो बातचीत के जरिए हल हों।
पर सवाल ये है कि क्या बात निकल कर दूर तलक जाएगी? कर्ज संकट से उबरने के लिए ग्रीस ने अपने प्रस्ताव यूरोजोन को भेजे। ले चलेंगे आपको एक ऐसे व्यक्ति के ड्राइंग रूम में जो किसी संग्रहालय से कम नहीं। खबरें विंबलडन से भी होंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। रूस के उफा शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों ने इस बात की पुष्टि की है। आज यहां शंघाई सहयोग संगठन की बैठक भी हो रही है। संभावना है कि दोनों नेता भारत पाक के द्विपक्षीय संबंधों और सीमा पर चरमपंथी गतिविधियों पर चर्चा करें। ग्रीस की सरकार में एक सुधार कार्यक्रम पर सहमति बन गई है और उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के सामने इसे पेश कर दिया है। माना जा रहा है कि इन सुधारों में करों में बढ़ोतरी और पेंशन में बदलाव शामिल हैं। शनिवार को यूरोजोन के वित्त मंत्री ग्रीस के इन नए सुझावों का अध्ययन करेंगे और रविवार को यूरोपीय संघ के सम्मेलन में इस पर चर्चा की जाएगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने ट्यूनिशिया में ब्रितानी पर्यटकों को निर्देश दिया है कि वे ट्यूनिशिया छोड़ दें, क्योंकि देश पर एक और चरमपंथी हमले की प्रबल संभावना है। बीबीसी संवाददाता का कहना है कि यात्रा को बदलने की सलाह खुफिया जानकारियों के आकलन के बाद दी गई है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हैमंड ने कहा कि ट्यूनिशिया के अधिकारी पर्यटकों की हिफाजत के लिए सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर रहे हैं, लेकिन ब्रितानी सरकार के मुताबिक इस तरफ अभी और काम करने की जरूरत है। अमेरिका में साउथ कैरोलिना की गवर्नर निकी हेली ने एक विधेयक पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत राज्य के संघाधीन झंडे को सदन के परिसर से हटा दिया जाएगा। इस झंडे का इस्तेमाल अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान गुलाम रखने वाले राज्य किया करते थे, इसलिए ये हमेशा विवादों में घिरा रहा। हाल ही में चार्ल्सटन शहर के एक चर्च में एक बंदूकधारी के हमले के बाद से इस झंडे को हटाने की मांग तेज हो गई थी। इस हमले में 9 काले लोग मारे गए थे। गवर्नर हेली ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए 9 कलमों का इस्तेमाल किया। हर मृतक के परिवार को इसमें से एक कलम दी जाएगी। इस मौके पर गवर्नर हेली ने कहा,
Tomorrow morning at 10 a.m. we will see the Confederate flag come down.
कल सुबह 10 बजे हम इस झंडे को उतार देंगे। हमारा राज्य परंपरा पर विश्वास करता है, हम अपने इतिहास पर विश्वास करते हैं, आदर पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम स्वाभिमान के साथ इसे उतारेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इसे सही जगह पहुंचा दिया जाए। ये थे गवर्नर निकी हेली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने यमन में आज से मानवीय आधार पर संघर्ष विराम की घोषणा की है। यह संघर्ष विराम रमजान का महीना खत्म होने तक, यानी 17 जुलाई तक चलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने सभी दलों का आह्वान किया कि वे इस युद्ध विराम का आदर करें और आम यमन नागरिकों तक सहायता पहुंचने दें। सऊदी अरब के पूर्व विदेश मंत्री सौद अल फैसल का आज निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। वे 40 वर्ष तक सऊदी अरब के विदेश मंत्री रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी शालीनता और हाजिर जवाबी से एक अलग पहचान बनाई थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हमेशा की तरह एक बार फिर से सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की होने वाली मुलाकात पर लगी हैं और ये मुलाकात साल भर बाद हो रही है। दोनों देश के नेता रूस के शहर उफा में आयोजित शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मुलाकात की पुष्टि की। उधर इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीउल्लाह ने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होगी।
जो मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान होने जा रही है, उसका तीन सतहों पर अच्छा असर पड़ेगा। एक बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर, दूसरा खित्ते के ऊपर और तीसरा बैनुल अक्वामी सतह के ऊपर। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यही चाहती है کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں اور ان کے درمیان یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ڈسپیوٹس اور مسائل ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہوں۔
یہ تھے پاکستان کے ودیش منترالے کے پروکتا قاضی خلی اللہ، جو کہ بتا رہے تھے کہ کئی مدوں پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ مودی اور شریف کی پچھلی ملاقات 27 مئی 2014 کو ہوئی تھی، جب مودی نے اپنے شپت گرہن سماروہ میں شریف سمیت سبھی دکشن ایشیائی دیشوں کے پرمکھوں کو آمنترت کیا تھا۔ اس کے بعد شریف اور مودی پچھلے سال ستمبر میں نیویارک میں سنیکت راشٹر عام سبھا کے ستر میں اور کاٹھمانڈو میں دکشن ایشیائی کھیتریہ سہیوگ سنگھن یعنی کہ سار کے سمیلن میں آمنے سامنے آئے ضرور، لیکن دونوں کے بیچ کوئی دوپکشی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پچھلے چند مہینوں میں دونوں پکشوں کے بیچ جس طرح سے تیکھی بیان بازی ہوئی ہے، اس تازہ ملاقات کے معنی کیا ہیں؟ یہی سمجھنے کے لیے ونیت کھرے نے پاکستان میں بھارت کے پورو راجدوت رہے جی پارتھ سارتھی سے بات کی۔
پڑوسی کے ساتھ یہ سوابھاوک ہے کہ متبھید ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی سمپرک نہ ہو، کیونکہ مجھے یاد ہے کارگل یدھ کے سمے بھی سمپرک قائم رہا۔ میں خود ملا نواز شریف سے اور ان کے ودیش منتری یہاں دلی میں آئے، تو سمپرک تو رہنا چاہیے۔
لیکن آؤٹ کم کی بات کریں تو آؤٹ کم کیا نکلے گا؟
دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے کہنا کہ وہ کیسے نکلے گا زندگی میں، یہ کہنا مشکل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پریاس تو کرنا پڑے گا ہمیں کہ سمپرک رہے، اور اس سے اگر کچھ اچھی نتیجہ نکلا تو اچھی بات ہے، نہیں نکلا تو ہمیں اسے سویکار کرنا پڑے گا۔
جی، اس سرکار کی اس بات کو لے کر بھی آلوچنا ہوئی ہے کہ پاکستان نیتی نہیں ہے، اور کیونکہ پاکستان کے ساتھ پاکستان بھارت کا نیبر ہے، پڑوسی ہے، نیتی کی کمی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ صرف ملنے سے، بات چیت کرنے سے جو دونوں دیشوں کے بیچ جو مدے ہیں اس کو حل کرنے کی طرف مشکل مدے ہیں، لیکن کوشش تو ہونی چاہیے، وہ کوشش بھی کیا آپ کو دکھ رہی ہے؟
جس طرح کے مدے کے کو سامنا کرنے کے لیے پاکستان کی ایک خواہش ہے، وہ تو ہم پورا نہیں کر سکتے، لیکن جو سہیوگ کا ہو یا وشے ہو تو اس پر ہم دھیان دے سکتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے پریاٹک اور جو دھارمک ستھان، جو ہم ان کے صوفی دھارمک ستھان ہیں اجمیر میں یا دلی میں جو آنا چاہیں، ان کو سویدھائیں دینا، پراتھمکتا ہمیں یہ دینا چاہیے کہ ہاں متبھید رہیں لیکن ایک دوسرے سے ملنا، خاص طور پر نئے پیڑھی کو، لوگوں کو یہاں آنے کا موقع دینا، ہمارے لوگوں کو وہاں جانا، اس سے بنا بات بنتی نہیں ہے۔ اگر جہاں تک پاکستان سمرتھت آتنکواد ہو، اس پر ہمیں کڑا رخ اپنانا ہے اور کڑا جواب دینا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے پریاس بھی ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیے، اگر یہ طے ہو جائے کہ اس کے بعد ودیش سچیو ملیں گے، یا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مہتوپورن ہوگا کہ سیما پر جو تناؤ ہے جموں کشمیر میں اور انیہ علاقوں میں، اس کو کم رکھنے کے لیے اگر دونوں دیشوں کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشن ملے تو شاید کچھ راستہ نکال سکتے ہیں، اگر نہیں نکلا تو کڑا رخ تو اپنا ہی سکتے ہیں۔
پچھلے ایک سال کا دیکھیں اگر ہم مڑ کر، پہلے نواز شریف کو اپنی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں بلانا، اس کے بعد سے ایک شانتی، کوئی کچھ نہیں ہوا، اس کے بعد سے نیپال میں ملنا، پھر شانتی، پھر اس کے بعد سے ٹیلی فون کالز ایک دو، پھر اس کے بعد سے ودیش سچیو کے جانا، پھر بالکل شانتی، اس کے بعد سے یہ ملاقات، مطلب یہ پچھلے ایک سال میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس کو تھوڑا سمجھائیے ہمارے سننے والوں کو۔
دیکھیے، بات یہ ہے، پاکستان کو ہم ایک سندیش بھیج رہے ہیں کہ بھائی ہم سمپرک اور اچھے رشتوں کے لیے ہم راضی ہیں، ہم چاہتے ہیں، لیکن اگر سیما پار سے آتنکواد کو پروتساہن ملے تو اس کے پرتی ہم کڑا رخ اپنائیں گے۔ یہ سندیش ہمیں بھیجنا چاہیے، یہ نہیں کہنا کہ بھائی اگر آتنکواد ہوئے بھی تو پورا وہ جو بات چیت کی پرکریا اس کو جاری رکھیں، اس میں کوئی مطلب نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بات چیت کی پرکریا آتنکواد کے بیچ چلتا رہا تو نتیجہ کیا نکلا، ہمارے دوتاواس کابل پر حملہ ہوا اور پھر ممبئی پر حملہ ہوا۔
ونیت کھرے بات کر رہے تھے پاکستان میں بھارت کے پورو راجدوت جی پارتھ سارتھی سے۔ تو نظریں سب کی پردھان منتری نریندر مودی اور پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف کی ہونے والی آج کی ملاقات پر ہیں۔ रुख ग्रीस का करते हैं। ग्रीस की सरकार में एक सुधार कार्यक्रम पर सहमति बन गई है और उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं यानी कि यूरोजोन के सामने इसे पेश भी कर दिया है। माना जा रहा है कि इन सुधारों में करों में बढ़ोतरी और पेंशन में बदलाव शामिल है। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये बदलाव कर्जदाताओं की मांगों के हिसाब से है या नहीं। प्रधानमंत्री सिप्रास ने आज पूरा दिन यानी कि कल का दिन अपने मंत्रिमंडल के साथ इन सुझावों पर चर्चा करते हुए बिताया। ग्रीस के रक्षा मंत्री पानोस कामेनोस ने कहा, ग्रीस के रक्षा मंत्री कह रहे थे जैसे कि राष्ट्रपति के साथ राजनेताओं की बैठक में पहले से ये फैसला हो चुका है कि कुछ ही घंटों में ग्रीस के सुझाव कर्जदाताओं के सामने रखे जाएंगे। अब शनिवार को यूरोजोन के वित्त मंत्री ग्रीस के इन नए सुझावों का अध्ययन करेंगे और फिर रविवार को यूरोपीय संघ के सम्मेलन में इन पर चर्चा भी की जाएगी। ओलिव ब्रशा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रिसर्च विभाग के निदेशक हैं और उन्होंने ग्रीस संकट पर आईएमएफ के रुख का पक्ष लिया। IMF ने जितना किया है उससे आगे भी इसे करना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं तो मैं इस पर कहूंगा कि IMF के भी अपने नियम हैं। आमतौर पर मैं मानता हूं कि नियमों पर भी सवाल उठने चाहिए, लेकिन इस केस में मुझे लगता है कि नियम सही हैं। ये थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रिसर्च विभाग के निदेशक ओलिव ब्रशा। तो ग्रीस में किस तरह से आर्थिक सुधार प्रस्तावों पर सहमति हुई, मैंने बात की ग्रीस की राजधानी एथेंस में मौजूद स्थानीय पत्रकार इरफान तिमूर से।
दो तीन दिन पहले से यूरोजोन के साथ यूनान की हुकूमत के बातचीत चल रही थी, इनकी मीटिंग्स हो रही थी, तो इनके प्राइम मिनिस्टर अलेक्सिस सिप्रा ब्रसल में मौजूद रहे, इनका जो इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं और दीगर वज़रा जो सरकारी अहदेदारान हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। मीटिंग्स होती रही हैं और कोई मामला हतमी तौर पर कंप्लीट नहीं कर पाया। तो अभी यूरोजोन की तरफ से जो प्रपोजल थे उन पर जो ग्रीक गवर्नमेंट है उनकी आज इमरजेंसी मीटिंग थी, इनके जितने भी मिनिस्टर थे उसमें शरीक थे। तो ये मीटिंग अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुई है और इसमें कुछ नई चीजें जो इन्होंने मीटिंग में इन्होंने कंप्लीट की हैं कि तय पाई हैं जो
वो कौन सी चीजें हैं जो इस मीटिंग से निकल के आई हैं।
जो प्रपोजल है ग्रीक गवर्नमेंट का वो इन्होंने अपने जो इकोनॉमिक मिनिस्टर इनके ब्रसल में मौजूद हैं, तीन दिन पहले से वहां पर मौजूद हैं मिस्टर चाकालो, तो उनको इन्होंने ये प्रपोजल दे दिया है। और प्राइम मिनिस्टर ने आज जो अभी खबर बाहर निकली है वो ये है अभी थोड़ी देर पहले कि इमे एटमोस, इसका मतलब है कि वी आर रेडी फॉर न्यू मेमोरेंडम, वी आर रेडी फॉर जो समझौता तय पा जाएगा।
तो इस समझौते में क्या बातें हैं?
इस समझौते में तरह की बातें हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस नहीं चाहती कि जो तनख्वाहों में कटौती हो और पेंशन में कटौती हो और जो टैक्स है जो इनका 23% तो जनरल टैक्स है और इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है ग्रीस की वो है टूरिज्म, तो वो नहीं चाहते कि टूरिज्म पर जो टैक्स था वो 11% था। तो यूरोजोन की तरफ से ये शरायत थी, ये प्रेशर था कि इस टैक्स को भी 23% कर दिया जाए जिससे इनके टूरिज्म पर बहुत बुरा असर पड़ने का अंदेशा था। अभी जो ग्रीक गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि अभी फौरी तौर पर जो तकरीबन 3 साल के लिए जो मेमोरेंडम सिग्नेचर होने जा रहे हैं वो है तकरीबन 50 अरब यूरो का वो समझौता होगा, 3 साल के लिए होगा। और ग्रीक गवर्नमेंट ने जो शरायत मानी है वो तकरीबन 8 बिलियन यूरो की है, जबकि यूरोजोन की तरफ से 12 बिलियन यूरो की शरायत के लिए इनको कहा जा रहा है कि आप इस चीज को 12 बिलियन पर लेकर आए।
क्या लगता है कि अब ये जब मेमोरेंडम पे बात बन गई है ये मामले का जो हल है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए अभी ग्रीक मीडिया में जो बातें आ रही हैं वो काफी मुश्किल हैं, वो इस तरह के ग्रीक गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना होगा। सबसे बड़ी बात जो हुकूमती एक मिनिस्टर है मिस्टर लाफाजानी, उनकी तरफ से ही फौरन तनकीद हो गई है कि मैं इस समझौते में शामिल नहीं हूँ, मैं जो इस मीटिंग में तो शामिल था। अभी हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि वो जो बातचीत है वो टेबल पर बैठकर डिफीट हो जाए। अभी मीडिया में काफी प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया है हुकूमत के खिलाफ, कौन कौन सी ये तजावीज हैं ये बाहर आना शुरू हो गई हैं। कल को जब इनकी आपस में बातचीत होगी, अभी ये 100% क्लियर नहीं है कि ये इनका मेमोरेंडम समझौता तय पा जाएगा। बैंक ऑलरेडी क्लोज है, तो अभी हुकूमत का भी ऐलान करना पड़ा है कि जो बैंक मंडे की शाम तक क्लोज रहेंगे।
ग्रीस में क्या चल रहा है ये बता रहे थे वहां पर मौजूद स्थानीय पत्रकार इरफान तिमूर।
सदियों से गूंजती आवाजें।
ओम नमो भगवते ऋग्वेदाय नमः।
ऐसे लोग जिन्होंने गढ़ा हमारा मन, जो आज भी धड़कते हैं हमारी संवेदना में।
कहें कबीर सुनो भाई साधो,
जिनके बिना भारत ऐसा भारत न होता।
मैं तो हूँ विश्वास में,
प्रोफेसर सुनील खिलनानी के साथ उस अतीत की यात्रा जो बीता नहीं बल्कि हम में जीता है। भारतीयता के अमर शिल्पियों पर बीबीसी की स्पेशल सीरीज फैला उजियारा सुनिए इस रविवार से दिन भर में।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। कुछ देर बाद बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतगणना शुरू होगी। बिहार के करीब 1,39,000 स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों में से 54% ने इसके लिए मंगलवार को हुए मतदान में हिस्सा लिया था। मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
आज बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतगणना होगी। स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों के इन सीटों के लिए मंगलवार को वोट डाले गए थे। इन 24 सीटों के लिए कुल 150 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चुनाव में सूबे के दोनों गठबंधनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जिन सीटों पर चुनाव हुए उनमें से अभी जदयू के पास 15, भाजपा के पास 5 और राजद के पास 4 सीटें हैं। इस बार के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के 10-10 जबकि भारतीय जनता पार्टी के 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बिहार में जल्द ही सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आज आने वाले नतीजे विधानसभा चुनाव की शक्ल तय करेंगे। चुनाव प्रक्रिया और इसके नतीजों के असर पर वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार कहते हैं,
इस तरीके का कभी हाइप नहीं बना था पॉलिटिकल। पहली बार इस चुनाव में एनडीए की ओर से एक घोषणा पत्र जारी किया गया, एक शक्ति परीक्षण माना जा रहा है दोनों ही गठबंधनों का। ऐसे इस चुनाव का विधानसभा के चुनाव पर बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारे लोग इसको सेमीफाइनल भी मान रहे हैं।
मंगलवार के मतदान के बाद दोनों गठबंधनों की ओर से दावे भी किए गए थे। वोट डालने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि नतीजे हमारे पक्ष में होंगे। वहीं भाजपा नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार ने दावा किया था कि भाजपा की सीटें 5 से बढ़ेंगी। किनके दावे कितने दमदार थे ये फैसला आज दोपहर तक हो जाएगा। वहीं इस चुनाव से जुड़ा एक पहलू और भी है। पटना हाईकोर्ट ने 30 जून को एक जनहित याचिका पर अपने फैसले में इन सीटों का कार्यकाल तय करने संबंधी आदेश दिया था। इस फैसले को चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। मनीष शांडिल्य, पटना।
बीबीसी इंडिया बोल।
व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की एक के बाद एक मौत से पूरा मामला रहस्यमय हो गया है। क्या व्यापम घोटाले की जांच इसकी सबसे कमजोर कड़ी है? आम आदमी इस घोटाले से कैसे प्रभावित हुआ? 11 जुलाई के इंडिया बोल में यही है बहस का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शाम 7:30 बजे इन नंबरों पर मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
जी, और अब कार्यक्रम में हम अखबार के पन्ने पलटेंगे। अखबार में मैं देख रहा हूँ कि व्यापम घोटाला, जिसका कि अभी हम ट्रेल चला रहे थे कि हमारी इस बार जो बीबीसी इंडिया बोले उसका विषय भी यही है। खबर क्या कहती है?
व्यापम घोटाले में मतलब आज सारे जो राष्ट्रीय अखबार हैं उनका पहला पन्ना व्यापम घोटाले से भरा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें, मैं 3-4 मुद्दे आपको बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो जाँच सीबीआई के हवाले कर दी है और सरकार से राज्यपाल पर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट निगरानी पर फैसला 24 को देगी और गृह मंत्री ने राष्ट्रपति को स्थिति से अवगत कराया।
मैं यहाँ पर एक खबर लेना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की खबर है, लखवी पर हमारा फैसला तथ्यों पर आधारित, और ये चीन का कहना है। और हमने कल अपने कार्यक्रम में इस पर रिपोर्ट भी की थी कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई तो मोदी ने किन किन बातों को उठाया और उस पर लखवी का जो मुद्दा था ये सामने आया था, और उस पर आज चीन का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने अपने कदम को सही ठहराया है।
दूसरा, दिल्ली में जो है आपके विधायक मनोज कुमार धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार हो गए हैं, और दिल्ली में तेज़ बारिश हुई है, पूरे उत्तर भारत में तेज़ बारिश हुई है। दैनिक भास्कर ने बताया कि राजस्थान सीकर में 8 घंटे बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए, और उत्तर भारत में 11 मौतें हो गई हैं तेज़ बारिश से, और दिल्ली में 4 घंटे का जाम रहा जैसे कि आप जानते हैं।
और मैं आपको बताऊं कि कल जब इस कार्यक्रम को करने के बाद जब दूसरी प्रसारण हमने ख़त्म किया उसके बाद जब हम घर जा रहे थे तो सामान्य तौर पर घर पहुंचने में मुझे लगभग 45 मिनट लगते हैं, और कल ये जो सफ़र था वो करीब 3.25 घंटे का था,
इसीलिए मैंने कहा जैसे कि आप जानते हैं। और दैनिक भास्कर में एक अच्छी खबर है कि दिल्ली के कई अच्छी क्या खबर है, मतलब ये एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है बहुत सक्रिय हो गया आजकल, इसलिए दिल्ली के कई अस्पतालों मॉल्स पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ना लगाने के लिए NGT ने जुर्माना लगाया है। और IMF का अनुमान है कि भारत की ग्रोथ रेट जो है दुनिया में सबसे तेज़ रहेगी और चीन पिछड़ जाएगा। दैनिक भास्कर ने ही एक विश्लेषण छापा है कि संविधान की अगर आपको कॉपी चाहिए तो बहुत मुश्किल से वो मिलेगी आपको। जागरण की अगर मैं खबर लूं तो एक अच्छी खबर यह है कि एम्स ने एक योजना बनाई है कि वो गरीब मरीजों की गिनती करेगी, ऑनलाइन गिनती करेगी, और उनके इलाज पर आने वाले खर्चे का ब्यौरा राज्य सरकारों को भेजेगी ताकि एम्स को उसके लिए आर्थिक मदद मिल सके, तो इस तरह से गरीब मरीजों का इलाज भी हो पाएगा। राजस्थान की एक खबर है कि संघ ने 2 घंटे में वसुंधरा को दिखाई ताकत, मंदिरों को तोड़ने के खिलाफ चक्का जाम में भाजपाइयों ने दिया पूरा साथ।
बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। रफ्तार के दीवाने संदीप कटारी कबाड़ में मिले एक जहाज को उड़ाना चाहते हैं और उसके इंजन पर आजकल काम भी कर रहे हैं। उन्हें पुरानी चीज़ों को जमा करने का शौक है और वो कुछ भी हो सकती हैं, कार से लेकर चाबी का गुच्छा, बस वो होना चाहिए सदियों पुराना। दिल्ली में उनका एक घर जो है वो जीता जागता संग्रहालय है। यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि पुरानी हैं, नायाब हैं और अभी तक काम भी कर रही हैं। हमारी सहयोगी इंदु पांडे वहाँ पहुँची उनका म्यूज़ियम देखने के लिए।
दिल्ली के दक्षिण में मेहरोली, और मेहरोली में एक छोटा सा गांव है जौनापुर, जहाँ के आसपास के घरों में से एक घर ऐसा है जो अपनी एक अलग कहानी कहता है, और वहां से ये आवाज आई हमको।
मेरा नाम संदीप कटारी है। छोटा सा म्यूजियम है जो मैंने बनाया है, जिसके अंदर सब तरह की पुरानी चीजें, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि सब चीज हमने यहाँ रखी है।
और जहाँ पे ये सारा सामान रखा है वो संदीप कटारी का घर है, जो अब एक म्यूजियम बन गया है।
अपने आसपास देखें तो आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी पुरानी यहाँ पे मिल जाएंगी जो आप शायद कहीं भी नज़र नहीं आते। मुझे काफ़ी समय हो गया ये चीज़ें इकट्ठे करते हुए, कलेक्ट करते हुए।
सोचिए एक ऐसा घर जिसके ड्राइंग रूम में एक कार खड़ी हो और उसके बगल में एक घोड़ा गाड़ी, दीवारों पे पुरानी घड़ियाँ लटकी हों और साथ में कुको वॉच की प्यारी सी आवाज़ कान में सुनाई देती है। संदीप जी का एक शौक जो अब दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गया है।
और आप देख के आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह की थी ये।
और ये वाली कार,
ये मैम 1919 की है, 3 दरवाजे की थिएटर है। तो आपको जब घुसना हो तो आप लेफ्ट से घुसेंगे, अंदर ड्राइवर साइड का दरवाजा बंद रहता है
हमेशा।
जी
अच्छा,
ड्राइवर साइड का दरवाजा बंद है, उसके बाहर स्टेप नहीं है आपका, और जब जाना हो अंदर तो लेफ्ट साइड से आप अंदर जाएंगे। उनको ये डर लगता था कि जब गाड़ी घुमा रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, तो ये ना हो कि आदमी बाहर गिर जाए, इसलिए वो दरवाजा बंद कर दिया गया था।
इस घर के दरवाजे भी कुछ कहते हैं क्योंकि वो कोलकाता से आए हैं, जिसमें आज भी पुराने तरह के रोशनदान बने हुए हैं जो कि बर्मा टीक का बना हुआ है। बस आप किसी चीज का नाम लीजिए और वो चीज इस म्यूजियम में हाजिर हो जाएगी। मसलन पियानो है, मिट्टी के तेल से चलने वाला पंखा है, तो मिट्टी के तेल से चलने वाली साइकिल है, फ्रिज है, और साथ ही एक ग्रामोफोन भी है जिसमें आज भी वही पुरानी आवाज सुनाई देती है। संदीप कटारी का ये एक ऐसा घर है जहाँ पे रखी हर एक छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज की कहानी है। फिलहाल आजकल संदीप कटारी एक छोटे से हवाई जहाज के ऊपर काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसे उड़ा पाएं। कार को रिस्टोर करने का काम इनका शौक है, जो इन्होंने वकालत का पेशा छोड़ के 20 साल पहले अपने इस शौक की शुरुआत की थी। इंदु पांडे, बीबीसी दिल्ली।
आइए इनके संग्रहालय से निकलते हैं और खबरों की दुनिया में वापस लौटते हैं। उन खबरों की बात करते हैं जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
रूस के उफा शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि दोनों नेताओं में भारत पाक के द्विपक्षीय संबंधों और सीमा पर चरमपंथी गतिविधियों के बारे में बातचीत होगी। ब्रसेल्स में ग्रीस के कर्जदाता एथेंस से मिले सुधार प्रस्तावों का अध्ययन करेंगे ताकि शनिवार को यूरोजोन के वित्त मंत्री इसकी जांच कर सकें और इस हफ्ते के आखिर तक यूरोपीय संघ में ग्रीस को संकट से उबारने वाले पैकेज पर एक आम राय बन सके। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इबोला रोग से निपटने के लिए एक फंड तैयार करने के मकसद से सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें गिनी, लाइबेरिया और सियेरा लियोन के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपीय संघ और विश्व बैंक की सहभागिता भी रहेगी। ईरान, इराक और अन्य मुस्लिम देशों में आज अलकुद्स के मौके पर हजारों लोग फलस्तीन से अपनी एकजुटता के लिए रैली निकालेंगे। भारत जिम्बाब्वे सीरीज का पहला एक दिवसीय मैच आज हरारे में खेला जाएगा। भारत की टीम के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे से काफी उम्मीदें की जा रही हैं। न्यूजीलैंड की कप्तानी कर रहे हैं एल्टन चिगुम्बुरा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में रॉजर फेडरर का सामना एंडी मरे से और जोकोविच की मुठभेड़ रिचर्ड गास्के से होगी।
तो ये थी वो खबरें जिन पर रहेगी हमारी नजर और अब हाल कल जो विंबलडन में खेल हुए उस पर।
विंबलडन 2015 दिन भर के खेल का लेखा जोखा।
विंबलडन पर लंदन से बीबीसी हिंदी सेवा की विशेष प्रस्तुति में स्वागत है आपका, मैं हूं अपूर्व। विंबलडन में इस बार महिलाओं का फाइनल अमेरिका की सरीना विलियम्स और स्पेन की गार्बिना मुगुरुथा के बीच खेला जाएगा। कल पहले सेमीफाइनल में 20वीं सीड की मुगुरुथा ने 13वीं सीड की पोलैंड की एग्नियेश्का राद्वांस्का को 6-2, 3-6, 6-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। 2012 की विंबलडन उपविजेता राद्वांस्का का ये तीसरा विंबलडन सेमीफाइनल था, मगर मुगुरुथा उन पर भारी पड़ी।
Well, I think I was playing really, really good. I mean too good.
मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा खेल रही थी। इसके लिए शांत रहना पड़ता है। मेरे लिए विंबलडन के फाइनल में पहुंचना एक सपने जैसा है, मगर मैं टूर्नामेंट जीतना चाहती हूं, तो अब ध्यान अगले मैच पर रहेगा। गर्बिना मुगुरुथा के शब्द। फाइनल में उनके सामने होंगी दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी सरीना विलियम्स, जिन्होंने कल सेमीफाइनल में 34 सीड की रूस की मारिया शरापोवा को सीधे सेटों में 6-2, 6-4 से हराया। वैसे अपना पहला विंबलडन फाइनल खेल रही मुगुरुथा ने पिछले साल फ्रेंच ओपन में सरीना को हराया था और सरीना को वो हार याद है।
Yeah, it's great for her, it's great for me. She actually beat me before.
फाइनल में पहुंचना उनके लिए बड़ी बात है, मेरे लिए बड़ी बात है। वो मुझे एक बार हरा भी चुकी हैं। उन्होंने मुझे बेहतर खेलने का जज्बा दिया है। वो बड़ी अच्छी खिलाड़ी हैं, तो ये आसान नहीं रहने वाला। सरीना विलियम्स के शब्द। और जहां तक भारत की बात है तो कल का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। लिएंडर पेस मिक्स डबल्स में सेमीफाइनल में पहुंच गए, लेकिन रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को हार का सामना करना पड़ा। कल सेमीफाइनल में नवीं सीड की बोपन्ना मार्गिया की जोड़ी का मुकाबला चौथी सीड के नेदरलैंड्स के जोंग जूलियन रोजेर और रोमानिया के होयो टेकाव से था। बोपन्ना मार्गिया 5 सेटों तक चला मैच 6-4, 2-6, 3-6, 6-4 और 13-11 से हार गए। वहीं मिक्स डबल्स में लिएंडर पेस और उनकी पार्टनर स्विस खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। 7वीं सीड की पेस और हिंगिस की जोड़ी ने तीसरी सीड की जोड़ी पोलैंड के मार्सिन मात्स्कोस्की और रूस की एलेना वेस्निना को सीधे सेटों में 6-2, 6-1 से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लेकिन मिक्स डबल्स के दूसरे क्वार्टर फाइनल में सानिया मिर्जा और ब्राजील के ब्रूनो सुआरेस की चुनौती क्वार्टर फाइनल में ही टूट गई। आज विंबलडन में पुरुषों के सेमीफाइनल मैच होंगे। पहले सेमीफाइनल में दूसरी सीड के स्विस खिलाड़ी रोजर फेडरर का मुकाबला तीसरी सीड के ब्रिटेन के एंडी मरे से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पहली सीड के सर्बिया के नोवाक जोकोविच की टक्कर होगी फ्रांस के रिसार्ड गैस्के से। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी विंबलडन।
और इससे पहले के कार्यक्रम में विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। रूस के उफा शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ग्रीस की सरकार में एक सुधार कार्यक्रम पर सहमति बन गई है और उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के सामने इसे पेश कर दिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने ट्यूनिशिया में ब्रितानी पर्यटकों को निर्देश दिया है कि वे ट्यूनिशिया छोड़ दें, क्योंकि देश पर एक और चरमपंथी हमले की प्रबल संभावना है। अमरीका में साउथ कैरोलिना की गवर्नर निकी हेली ने एक विधेयक पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत राज्य के संघाधीन झंडे को सदन के परिसर से हटा दिया जाएगा। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। एक घंटे बाद आपसे फिर से मुखातिब होने वाले हैं। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।